Jema. So this is a talk for the Sri Aurobindo Medical Association. And the subject is, they have given a broad theme. Theme is good health. In good health is the springboard to transformation. They have asked me to, if either to speak on consciousness and health or any other subject. Okay, consciousness and health we can speak about. So instead of going into semantics, what is consciousness and what is health and all that, we can simply say that human beings, in a certain sense all creation, but in human beings there are at least three planes at which we all exist. It's easy to understand. One is the physical. And physical is the body and all that is done through the body. All that happens through the body. Action, karma. There is a subtle inner world which everybody has. It's a world of thought, feelings, will, passions, impulses, lot of things. And all of them, this inner world is trying to express itself through the body. So when we read about Devasur Sangram, let me just take a little diversion. That there were human beings who participated with the Devas. It basically means that they allowed, they were human beings who very consciously. There is a war going on, like today also, every time there is a Devasur Sangram, where beautiful, positive, uplifting forces are at work and forces which lead towards degeneration, degradation of society and the people who justify it. Like woke. Completely justifies any kind of thing. So one can see the Devasur Sangram is going on. So there were people, kings and priests who participated in the Devasur Sangram from the point of the Devas. So they allowed beautiful, divine, positive thoughts, energies. They became instrument of that kind of action, conscious instrument of the Devas. And there are others who are instruments of the Asuras, who are expanding the empire of the ego, etc., etc. So there is a lot of thing going on in the inner being of man, inner consciousness of man, which includes the world of thought, feelings, will, impulses. Most of the time it is unconscious. That is very unfortunate. So how do we get to know? Even then we don't get to know. When we fall sick. So when we fall sick, we go to a doctor and we are afraid. And doctor treats the physical illness. But there is a whole world inside which is important. But unfortunately, neither the person is conscious. Most people, if you ask, that do you live by the ego? He says, no, that person lives by the ego. Do you have desires? Not many. A little bit like everybody. I like to eat good food. Huh? That is as if bhagis up, you know, we are blind, absolutely unconscious. So when we fall sick, we understand. Then also we don't understand, because if you go to a doctor will, his business is to treat the illness. And if he gets into all this understanding, patient will not come again. Because basically what are you doing? You are telling the person, look, you are a shareholder or stakeholder in the process of being sick and in the process of recovery. That's too much of a burden. Patient don't want to do introspection, self-reflection, and shift them. I fall sick because there is a lady in the house or somewhere. Always there is somebody else to blame. So modern medicine has completely neglected. There is a whole history to it. Reductionism, all this. So everybody knows. We are not going into that. So what happens is that we completely miss out on this aspect. Now I speak a little bit in Hindi, because this thought, this topic is supposed to be a mixed Hindi and English. तो कहने का अर्थ ये कि हम सबके अंदर एक बाहरी दुनिया है, जिसमें हम जो दिखता है, जहां हम कर्म करते हैं, हाथ से, पांव से, वाणी से, और हम बीमार पड़ते हैं जिसमें कई सारी चीजें हैं, मेडिकल साइंस बताती है, और एक हमारी एक आंतरिक दुनिया है जो विचारों की, भावनाओं की, संकल्प की, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता और दूसरों को उसके बारे में ज्यादा पता होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ये और डेंजर, हमको दूसरों के बारे में पता होता है और इस कारण हम अचेत रहते हैं, दूसरे भी अचेत रहते हैं, क्योंकि आप अगर दुनिया को देख रहे हो कि उसमें क्या बुराई है क्या है, तो आप अपनी तो देख नहीं रहे। कई बार तो माँ ने यहां तक कहा है कि जो भी बुराई तुम दूसरे में देख रहे हो तुम्हारे अंदर 100% है। ये बहुत, जब पहली बार ये पढ़ा मैंने तो पढ़ा तो मुझे एक कहते ना 440 वोल्ट का झटका लगा था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत देखता था, लेकिन देखते सभी हैं, अपने को कुछ समझते हैं, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये जो कुछ मुझे दिखता है वो मेरे अंदर भी है, सब कुछ है। बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, एक चीज ऐसी नहीं है। शेरविंद ने इसको कहा, ये पहला स्टेप है रियलाइजेशन का कि देर इज नो सिन इन द वर्ल्ड विच इज नॉट माइन। फर्क क्या है फिर, कुछ एक्सप्रेस्ड है कुछ रिप्रेस्ड है, इतना ही फर्क है। तो साधु बच्चा ये सब, ये योग में तो ये बखिया उधड़ जाती है, तो जो आपके अंदर छिपा है वो बाहर प्रकट होने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज के समय में बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, वो कैथारसिस है। बीमारी को बहुत पहले एक बार एक समय पर्ज कहा जाता था। पर्ज का मतलब आपके अंदर जो अचित अंधकार ये सब जो चीजें हैं वो एक रोग का रूप लेके निकलती थी। और ये सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए कि कभी आप बहुत बड़े बोझ से, या तो साइकोलॉजिकल पर्ज होता है, या साइकोलॉजिकल पर्ज डिप्रेशन क्रोध अवसाद मन में जो कुछ चल रहा है, या फिजिकल पर्ज होता है, तो साइकोलॉजिकल में ही निकल जाए निपट जाए तो अच्छा है, लेकिन वो भी उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर लंबा आपको डिप्रेशन चल रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो खैर ये पर्ज क्या होता है, वो विष अंदर से निकलता है। जब वो निकलता है तो सिस्टम ओवरवेलम्ड हो जाता है, लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो पागलपन या फिजिकल बीमारी, दौरे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो अंदर से वो विष वमन हो रहा है। लेकिन जब हम निकल जाते हैं उससे थोड़ी देर के लिए सही, तो इतना हल्कापन लगता है। कभी देखिएगा बुखार के बाद क्या लगता है, जब बुखार ठीक हो गया तो एक हल्कापन लगता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक फीलिंग आती वीकनेस की, किसको वीकनेस आती है, अगर वो चीज़ जो निकल गई है ना वो आपको एनर्जी दे रही थी तो आप वो नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप शांत रहो तो आप देखोगे अंदर में एक जैसे कोई नई ऊर्जा, वो आपके अंदर एक पुराना टंकी खाली करके भगवान एक नई टंकी भर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग आदत से मजबूर हैं तो वापस उसको बुला लाते हैं। हमको वही पेट्रोल वाला चाहिए, हमको नहीं चाहिए वो नया जीरो एमिशन वाला ग्रीन, तो ये इस कारण से बार बार बीमार पड़ते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हम अंदर के जगत जो है वो ऐसी ऊर्जाओं को ड्रॉ करता है, हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है विचार है कौन देख रहा है, भावनाएं हैं किसको मालूम है, मेरे अंदर क्या भावनाएं उठ रही हैं किसको मालूम है, सीक्रेट जिसको कहते हैं सीक्रेटली चेरिशेज द सीन इन सीक्रेट, किसको पता है कौन देख रहा है। अच्छा भगवान देख रहे ना, वो कोई बात नहीं, वो तो बड़े अच्छे हैं, वो अंतर्यामी है। बात ये नहीं है, बात ये कि हमारे अंदर जो भावनाएं और विचार और इम्पल्सिस की तरंगे उठ रही हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट में आ रही हैं। मैंने एक बार इसका बड़ा विचित्र एग्जाम्पल देखा है, मैं तो अपने ही लाइफ की बता रहा हूँ और किसी का नहीं, बहुत पहले हो गया, 25 साल हो गया। एक टेलीविजन देख रहा था मैं हमारे मेस में बैठ करके, तो अब कोई पर्टिकुलर सीन या फिल्म चल रही थी, उसने थोड़ा सा मुझे एक अलग ढंग से मूव किया, नॉट ए हेल्दी वे आई मस्ट से। तो जब तक मैं उसको पकड़ूं, मैं उसको संभल रहा हूं, सडनली आई रियलाइज कि उस कमरे में कुत्ता आ गया और वो मुझे ऐसे ताक के देख रहा है, और वो इतना भयंकर था उसका वो रूप, एयरफोर्स की मेस में कहां से आया आकर के। वो कहते भी हैं कि पशुओं को ना गंध आपकी, भय की गंध होती है, दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, क्रोध की गंध होती है। सेक्सुअल एक्ट की गंध ही नहीं होती है, बहुत सारे डिसइंटीग्रेटिंग वायरस लाइक ना, वो छोटे 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 वो एलिमेंटल बीइंग्स वो आसपास गैदर हो जाते हैं, चेतना को तोड़ते हैं। अब हमारे अंदर के विचार और भावनाएं ये जुड़े हैं इन जगतों के साथ, हम दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये बीइंग्स तो उसको मजा ले रहे हैं। बहुत सारी कहानियां इस तरह की, कई बार आप देखें कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं, कुछ दिन जब झगड़ा नहीं होता है तो उनको ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है, फिर कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो वास्तव में ये बीइंग्स जो होते हैं ये टेलीविजन की तरह, अब उनको लगता है भाई इस घर में बड़ा दिन हो गया, यहाँ चल के देखते हैं क्या चक्कर चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हस्बैंड वाइफ शांत बैठे हैं। तो ये पीछे से ये चीज़ें आपके अंदर संभावना है, वो गुदगुदी करेंगे, अचानक आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करोगे और कुछ बोल पड़ोगे। अब उन्होंने केवल आपको नहीं किया है, दूसरे को भी गुदगुदी की है, दूसरा भी रिस्पांस में तुम तो खाली यही देखते हो शुरू हो गया स्टेज। अब ये बीइंग्स क्या करते हैं, ये खाते हैं हम पर, इनको कहा गया ना राक्षस, उनको बासी खाना चाहिए, उनको ये खाना चाहिए, ये खाना अगर नहीं मिलेगा तो कुछ समय के बाद चले जाते हैं, उनको ये खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो जगह जगह जाके ये जैसे कुत्ते रोटी लेते हैं ये आकर के लेते हैं। अब इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारी एक ओकल्ट प्रोसेसेस थी इनको दूर रखने की, घर में आप उनको स्मेल का भी इनका एक अपना शास्त्र है, आप घर में अगर अच्छी एक एक अगरबत्ती होती है जो इनको दूर रखती है, इट्स ए साइंस ऑफ सटल। आपने देखा होगा एक समय कोरोना के समय वो जो साउंड करने का, तो ये सच है कि कुछ ध्वनियाँ हैं, शंख की ध्वनि फॉर एग्जाम्पल, ये सच है कि ये ऐसे बींग्स को दूर रखती है, क्योंकि ये बींग्स क्या करते हैं आपके अंदर भय डालते हैं, क्योंकि ये भी भय से भरे हुए हैं, ये बड़ी विचित्र विडम्बना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये टेररिस्ट जिनको बोलते हैं टेररिज करते हैं आपको, ये खुद भय से भरे हुए होते हैं, दैट्स वाई दे एक्ट, तो दे फाइंड वेज एंड मीन्स टू ब्रिंग फियर, इनका सारा ये स्ट्रेटेजी इस पर है। और भयभीत व्यक्ति में इनको बड़ा मजा आता है, बिकॉज वो उस भय को खाते हैं और उससे उनको ऊर्जा मिलती है। दिस इज अ सटल ट्रूथ ऑफ लाइफ, सटल इनर रियलिटी। तो वह पूरा एक अंदर का मनोविज्ञान है जो हम नहीं जानते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की चेत इसीलिए उसी से निकलता था कि आप कैसी कंपनी रखते हो। गुरु नानक जी ने कहा ना कि काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अहनिश भागो। आपको लग रहा है कि सिंपैथी, श्री अरविंद ने यहां तक कहा है, जिसको जब पहली बार मैंने ये पत्र पढ़ा था, पढ़ने चाहिए उनके सारे पत्रावली, एवरीबडी मस्ट रीड। पहली बार जब ये पत्र पढ़ा था, वन शुड नॉट गेट इन सिंपैथी विद दोज हु हैव गॉन रॉन्ग एंड लॉस्ट देयर बैलेंस। तो आपको लगता है थोड़ा एक डॉक्टर के नाते मुझे एक क्षण को लगा, क्योंकि एक स्वाभाविक सिंपैथी हो जाती है कि कोई बीमार है, कोई किसी को कोई डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम, आपको एक सिंपैथी आती है। शेरविन कहते हैं डोंट। मैंने कहा अरे तो क्या कहते हैं, बिकॉज यू विल गेट कॉट इन टू इट एंड इट विल नॉट हेल्प द अदर पर्सन। तो आपको क्या करना है, करुणा लानी है। करुणा इज फ्रॉम अबव। आप देख रहे हो कि ये तो कीड़े की तरह उसमें चिपका हुआ रोना रो रहा है अपना, अगर आप उसमें फंस गए अटक गए, और यही होता है ज्यादातर घरों में, आप उसमें अटक जाते हो और आप भी उसी लेवल पर ड्रैग्ड हो जाते हो, जबकि आपको उसको करुणा से देखना है कि ये व्यक्ति किस अवस्था में है, क्या कर रहा है ये अपने जीवन के साथ बाकी चीजों के साथ। तो इसलिए ये पूरा एक अंदर का विज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान मेडिकल साइंस टोटली खो चुकी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग भी, इवन जो शुरबिंदो के नाम पर भी हम लोग हेल्थ वगैरह करते हैं, हम भूल गए हैं। अंत में हम क्या करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन। इट इज नॉट अबाउट गाइडेड मेडिटेशन, फॉर गॉड सेक। ये नहीं है कि भाई गाइडेड मेडिटेशन से हम शांति का आह्वान, अगर आपने उसके जड़ को नहीं निकाला तो गाइडेड मेडिटेशन आपको दो दिन काम करेगा मैक्सिमम। जड़ से चीजों को निकालने के लिए बहुत सिंसेरिटी चाहिए, क्योंकि हमको दूसरे में बुराई दिखती है, अपने अंदर नहीं दिखती है। और ये भी सच है कि एक टिपिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ना तो इतना समय है ना वो ये रिस्क लेगा, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि भैया आपको अपने ऊपर काम करना है, वो उसको क्या है, वो दूसरे के पास चला जाएगा। मेरे साथ तो ऐसे हुआ है। अब एज ए डॉक्टर दैट इज अ करेक्ट अप्रोच, यू हैव टू सी इनसाइड, लेकिन वो चला जाता है। उसको ऐसा डॉक्टर चाहिए जो बड़ी बड़ी मेडिसिन लिखी है, बहुत बड़े नाम दे और बीमारी को, उसको मजा आता है भाई, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी बीमारी, छोटी मोटी क्यों होगी हमको। इसमें भी एक ईगो होती है। तो मुख्य चीज ये है कि बीमारी के बाहर जो डिसहार्मनी दिखती है उसके पीछे आंतरिक कारण है। चेतना बहुत बड़ा शब्द है, हम इसको केवल ये लें कि हम चेतना की गति से हम उसको समझ सकते हैं, चेतना इसके भी पीछे है। बट लेट अस नॉट एंटर इनटू कॉन्शियसनेस। हम कितना कहें कि मन की का जो जगत है, भावनाओं का जो जगत है, विचारों का जो जगत है, संकल्प का, कामनाओं का जो जगत है, ये सब हमारे शरीर पे इंपैक्ट करते हैं और हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर भी इंपैक्ट करते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी जब मैंने पढ़ा था मैं ढूंढने लगा, मैंने कहा ये कैसे ऑपरेट करता है। माँ कहती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वैनिटी। मैंने कहा अरे पागल हो गया, इसको वैनिटी क्या है। मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की है, मैं शेयर कर रहा हूं। वैनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास क्या है। ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत कम है कुछ, उनकी ना कोई खास कैपेसिटी है, अनयूजुअल। ये बात एक बार मैं आपको पर्सनल लेवल पर ये बता रहा हूं कि एक बार मनोज दास के साथ ये शेयर हुआ था, उन्होंने भी ये बात कही कि आई हैव सीन पीपल हु हैव वेरी लिटिल इनसाइड देम, दे आर फुल ऑफ वैनिटी। मैंने कहा ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। वो अपने को पता नहीं क्या समझते हैं कि मैं कुछ हूं। ये बड़ी विचित्र विडंबना है, क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको विनम्र करता है, आपको पता चलता है, क्योंकि ज्ञान आएगा नहीं जब तक अभी पापड़ बेलेंगे नहीं। बिना विनम्रता के ज्ञान आएगा नहीं। जब आपको ज्ञान आता है तब तक विनम्रता सेटल हो जाती है, क्योंकि आप देखते हो ये आनंद है भैया, कोई नहीं कह सकता कि मुझे आता है। लेकिन जिनके पास जितना कम ज्ञान उतना बड़ा दर्प, मिथ्याभिमान, वैनिटी का यही वर्ड है। और वो मिथ्याभिमान कहां तक जा सकता है, इसका हो सकता है कि मुझे स्क्रिप्चर्स आते हैं और वहां पतन प्रारंभ होता है, और वहां मैं विशेष हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा व्यक्ति क्या है। ये जो शक्तियां है ना जो पीछे, ये बड़ी भयानक होती है, वो आपको ढक देती हैं। इसी को कहा गया अज्ञान का पर्दा। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, हम लोग कहते हैं अज्ञान का पर्दा। इग्नोरेंस क्या है, अपने आप में उसकी वास्तविकता थोड़ी है कोई, वो ज्ञान पर एक पर्दा डाल देती है। इसको माने जगह जगह बताया, और उस व्यक्ति को अगर आप कुछ भी बोलोगे वो होस्टाइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप वो पर्दा हटा रहे हो, वो पर्दा डालने वाला उसको नहीं हटाने देगा। पर्दा जो हट गया भेद खुल जाएगा। जिसका भी अंदर में पर्दा हटा है थोड़ा भी, उसकी पहचान ही है, विनम्रता होगी, शांति होगी, उसको पता है कि ये जो सामने मेरे पीछे है, प्रहलाद को देखिए कि भाई इनके सामने मैं कुछ नहीं हूं। और जब तक वो पर्दा नहीं हटता है तब तक ये सारी चीजों की, इसीलिए शेरविन बार बार कहते हैं साइकिक बींग, क्योंकि साइकिक बींग ऐसे भगवान को तो आदमी मन से भी, ज्ञान योगी प्रयास करता है, हृदय के भावों को पकड़ के भक्त प्रयास करता है, कर्मयोगी संकल्प से। साइकिक बींग की बात क्या होती है, क्योंकि साइकिक बींग तो सीधा भगवान का बच्चा है और साथ में है। जैसे ही उसको टच करते हैं तो आपको विनम्रता इन द ट्रू सेंस, ये नहीं कि आप दूसरों के सामने जी हम तो कुछ नहीं है, आप सब कुछ हो, ये तो मूर्खता है। और कई बार एक आप मतलब इसके पीछे बहुत सारे मुझे काम लेना है तो आप कहते हैं गधे को बाप बनाना, ये नहीं है। लेकिन आपको अपने अंदर ये स्पष्ट हो जाता है कि भैया उस अनंतता के सामने सारी सृष्टि नगण्य है, और तब खुलता है वो रहस्य, और तब खुलता है वो अनंतता से संपर्क। ये सब चीजों को मेडिकल साइंस में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि डॉक्टर सबसे अधिक प्राउड होते हैं। मैं आई एम सॉरी टू से, जितने बड़े प्रोफेशनल होते हैं उतना उनका अहंकार बड़ा हुआ होता है। एक समय था जब डॉक्टर इंजीनियर, अब वो साइंस टाइम बदल गया, अब डॉक्टर और आईएएस अफसर। अब पॉलिटिकल पावर आ गई तो बस वो तो फिर अपने को समझता है कि मैं भगवान ही हूं। आप उसको, उसने पढ़ाई भी की है, उसको मिल, अब उसके बाद आप बोलेंगे नहीं नहीं एक अंदर का जगत है, वो कहता है भाई 10 साल मैंने एमडी करी, अब तो मुझे अंदर का जगत बता रहे हो। तो ये तो बिरला ही कोई होता है जो योगनिष्ठ होता है। बिना योगनिष्ठ हुए आप गाइडेड इमेजरी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, दिस इज नॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इट्स अबाउट ग्रोइंग कॉन्शियस। और जब आप सचेत होते हो तभी आप किसी को सचेत होने में सहायता कर सकते हो, नॉट अदरवाइज। तो ये अंदर का जो गुरु नानक देव ने कही ना, कहना ना कि यह खेल कठिन है, कौ गुरुमुख जाना, अस्तुति निंदा दो त्यागी। तो वन हैज टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, प्रैक्टिस इक्वानिमिटी। इसीलिए कई बार पहले मैं भी ऐसे जाके बोल देता था, मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, सच बात यह है, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है। और सच बात है कि एक पॉइंट के पहले आप प्रीमेच्योरली इसको नहीं, एक समय होता है जब ईगो का खेल आवश्यक होता है। आप एक डॉक्टर अभी नया नया गया है, वो उसको आप बोलोगे नहीं नहीं सारा अंदर का जगत है, वो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपका फिर। तो ये एक समय होता है जब ये इल्यूजन जिसको कहते हैं ना, ये पर्दा, ये भी इल्यूजन का भी खेल है, वो भगवान खिलाते हैं, एक कारण है इसका। फिर एक समय आता है जब वो अपने आप सीकिंग जागती है। तो ये ज्ञान केवल उनके लिए है जिनके अंदर सीकिंग सचेत रूप से जाग गई है। आप इसको पकड़ करके मेडिकल साइंस में या किसी साइंस में नहीं जबरदस्ती ला सकते हो, क्योंकि वो कई बार वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वही जो है ना, हम फ्लैटन करना चाहते हैं हर चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक नियम है, एक प्रोसेस है। लेकिन अगर पूछेंगे तो बाहरी कर्म के पीछे एक अंतर का जगत है, अगर हम उसके प्रति सचेत हो जाएं कि हमारे अंदर कौन से विचार, कई बार हम, कई लोगों से भी मिलता हूं, बोलते हैं हमारे अंदर तो कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ नहीं है, हम तो बस थोड़ा बहुत, ये तो सबसे बड़ा अंधकार है। बात नेगेटिव पॉजिटिव की है ही नहीं, आपको जो नॉर्मल नेचुरल लग रहा है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल नेचुरल नहीं है। इट मे बी ऑल राइट फॉर ह्यूमन लाइफ, पर आप वल्नरेबल हो, मतलब आपको कभी भी ये शक्तियां एक प्लेथिंग के रूप में यूज कर सकती है। लाइन बड़ी थिन है, भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब वो ट्रिप ओवर होगा इसका कुछ पता नहीं होता। आप लोग हैं सोचते हैं हम जाके रोज पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर ध्यान कर रहे हैं, तो वी आर, ये रिलीजियस अप्रोच है, यू मे डू इट इवन विद श्योर बिंदो, पर स्पिरिचुअल अप्रोच होती है जहां हम अपने अंदर निष्ठा से, सिंसेरिटी से ढूंढते हैं कि हमारे अंदर कौन से विचार हैं जो अलाइन नहीं है हमारे लक्ष्य के साथ, कौन सी भावना है। अब नेचुरल प्रारंभ में बहुत कुछ होगा, जब आप डिस्कवर करोगे तो आप उसको हटाओगे। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, विश्वामित्रो मेनका की कहानी है। अगेन जब आप एक एज में पढ़ोगे तो आपको अजीब लगता है। उन दोनों का प्रेम होता है, प्रेम होने के बाद क्या होता है, संबंध होता है, संबंध होने के बाद क्या होता है, एक बच्चा हो जाता है। अब कहानी देखिए इसके बाद क्या टर्न लेती है। मेनका चली जाती है अपने लोग और विश्वामित्र कहते हैं अरे मेरा तो पतन हो गया, वो तपस्या में चले जाते हैं। बच्ची का सोचिए आप, बच्ची कौन बनती है, शकुंतला। तो मैं जब पढ़ता था मेरे मन में विचार आता था, बचपन में इस कहानी खूब पढ़ी, सारी पढ़ी, कि विश्वामित्र ने जो किया वो सही किया है गलत किया, बच्चे को कैसे छोड़ करके चले गए। वो ठीक है आपका पतन हुआ, अब आप बच्चे को ब्रिंग अप करिए, पर विश्वामित्र महान ऋषि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेद मंत्र जिसको आज गायत्री मंत्र कहते हैं, ही इज द वन हु हैज गिवन इट। वो कई बार ऐसे उनका पतन होता है फिर वो उठते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उस कोर को पकड़ लिया कि मेरा यहां पर वीक स्पॉट है, इसको ओवरकम करना है। व्हाट ए वन पॉइंटेड मैन, ये मानना पड़ेगा कि इज वन पॉइंटेड, और बिकॉज ही इज वन पॉइंटेड भगवान टेक्स केयर। अब शकुंतला साम्राज्ञी बनती है, ये एक अलग चीज है कि जब आप भगवान की ओर मुड़ते हो सच्ची निष्ठा से, तो भगवान आपके जो इमीडिएट चीजें हैं उनका ध्यान रखते हैं, कभी कभी पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं जब आप मुड़ते हो, क्योंकि वो देखते हैं कि इसने ये त्याग किया है। ऐसा नहीं कि विश्वामित्र मुंह मुड़ के चले गए, उनके अंदर भी पिता का ये सब भाव, बुद्ध, गौतम बुद्ध चले गए। तो जब आप ये करते हो तो भगवान का अपना तरीका है कि वो उनकी छाया आती है, वो देखती है कि भाई इसका, इस व्यक्ति ने एक सत्य निष्ठा से करा है जो इसको करना चाहिए। वो कठोर लग सकता है बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आध्यात्मिक जीवन वास्तव में सरल क्यों नहीं है, आपको पता है कि क्या करना है लेकिन कठिन होता है करना। यहां तक कि सात्विक कोमल भाव जिसको कहा गया वैष्णवी माया, अर्जुन के साथ वैष्णवी माया ऑपरेट कर रही थी, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे कुछ कहूं, इनके विरुद्ध, इसको वैष्णवी माया कहा है शेर, बड़ी पावरफुल होती है, इसका काट बड़ा मुश्किल है, वह आपको मोह के पाश में ऐसा बांधती है कि कृष्ण ही निकाल सकते हैं उसमें से। तो ये सारे खेल अंदर के हैं जो हम लोग नहीं देखते, नहीं समझ आता। तो ये केवल ऐसे नहीं है जो साइकोसोमैटिक इसमें इसका डिस्कशन होता है, और विचार के जगत से हर एक जगत का कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब हर एक हमारे अंदर जो वृत्ति है, जो जो हमारे अंदर प्रकृति इनर नेचर जो उसके अंदर हो रहा है, ऊर्जाएं हैं, उस सब का कॉरेस्पॉन्डिंग जगत है, वो उसको सपोर्ट करता है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो बीमारी उनको ठीक हो सकती थी, मानसिक रोग की भी बात कर रहा हूं, फिजिकल में तो आदमी हारे दुहारे चला जाता है, वो नहीं जाएंगे ठीक, जहां उसका इलाज हो सकता है नहीं जाएंगे, उनको रोक दिया जाता है। मुझे कहानी याद है, इनकी दादा की कहानी है कि कोई व्यक्ति था यहाँ पे, बहुत वेल नोन है, अब ऑब्वियसली नाम वाम तो नहीं लेना चाहिए, तो अब बहुत ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, वेरी गुड इन एवरीथिंग। माँ ने कहा था इसका विशेष ध्यान रखना, तो सब लोग इसको विशेष ध्यान देते थे। अब हो गया, जो हुआ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दादा ने उसको कहा था कि यू कम एंड मीट मी टुमारो। दादा वेट कर रहे थे, उनके पास ये क्षमताएं थी कि वो इन चीजों को यूं निकाल सकते थे, तो दादा वेट कर रहे थे और ये भूल गए और इन्होंने शादी कर ली जिसके साथ दादा उनको रोकने वाले थे, शादी कर ली। उसके बाद ऐसा भटकन, ऐसी भटकन, ऐसी भटकन, कितने वर्ष लग गए, फाइनली यू कम बैक। वो भगवान की हेतु की कृपा है, बट इट कैन बी सच ए टेरिबल ऑडियल। तो क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग जगत होता है जो पर्दा डाल देगा आपको हेल्प। ऐसे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, वो आश्रम जाना बंद कर देते हैं, समाधि के पास नहीं जाते हैं। उनकी लॉजिक क्या होती है? हम इतने बुरे, इतने गिर गए, हम कैसे जाएं माँ के सामने? अरे मूर्ख, ऐसे टाइम पे नहीं जाओगे तो कब जाओगे? और ज्यादा जाना चाहिए आपको, तो पकड़ लेना चाहिए मारखंडे की तरह, माँ बचाओ, रोज जाके बोलो। शेरविन के पास एक पत्र है, एक सेठ जी थे, वो दूसरे दिन का टेलीग्राम आता था, ये पब्लिश नहीं है क्योंकि ये टेलीग्राम आप क्या पब्लिश, I have fallen again, save me. तो शेरविन कहते कमाल है, हर दिन गिरेगा, हर दिन। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय रोज रात को, जो फिल्म एक्टर थे, रोज रात को चले जाते थे रेड लाइट एरिया, सुबह उनको अमल किरण जाके पकड़ के ले आते थे। और शेरविन कहते हैं मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस इन इंग्लिश पोएट्री, ये भी सच है। बहुत ही वॉल्ड थे वो एक लेवल पर, अल्टीमेटली ही कुंड बेयर, ही वेंट अवे। और शेरविन से किसी ने पूछा आपने भेजा, बोला नहीं मैंने नहीं भेजा, बिकॉज ही न्यू कि उनके अंदर एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है ना हमारे अंदर, ये हम बाहर से जो चीजों को देखते हैं, जज करते हैं, और उसके अंदर हम सोचते हैं कि इस योग साधना मतलब थोड़े मैंने थॉट्स भगवान की ओर अलाइंड हो गए, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। दिस योगा इज फार मोर डीपर, और हर एक लेवल पर एक पूरा जगत जुड़ा हुआ है, वो जगत सपोर्ट करता है आपकी वृत्ति को। आप छोड़ेंगे एक बार, वो 10 बार आपको कंपेल करेगा। ये लंबा खेल है, और इसीलिए शेरविंद ने कहा है ऊपर से क्या है इस योग में, यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव। तो एक वृत्ति जो आपके अंदर है वो आप अकेले का काम नहीं कर रहे हो। आप शेरविंद कहते हैं इस योग में एक व्यक्ति हजारों लोगों का काम करता है। एक यहां पे थे व्यक्ति, वो शराब पीते थे बहुत, तो किसी ने पूछा माँ आपने इसको क्यों रखा है? माँ ने कहा इसने अपनी, इसकी सोल ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं अल्कोहल की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। शराब पीता था और प्रे करता था, और माँ उसके अंदर धीरे धीरे अल्टीमेटली, मुझे पता नहीं है कि उसका शराब छूटी कि नहीं छूटी, लेकिन ये फैक्ट है। तो ये एक खेल जो है ये बहुत ही एक सूक्ष्म भूमि पर होता है। अगर हम अपने आप को अंदर में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सिंसेरिटी की वर्ड है, उसका पहला स्टेप है दूसरों को देखना बंद करें। दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो गड्ढे में गिर रहा है, उसको बचाने की चेष्टा में आप ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, आपके अंदर आंख आ जाएगी। उसके बाद केवल उन पर आपको बोलना है, अगर कोई आपको अपना चार्ट दे दे कि भाई मुझे प्लीज हेल्प मी, गाइड मी, तो आप बोल दीजिए, पर उसके आगे नहीं, क्योंकि वो डेंजरस है, वो इवोल्यूशन की प्रोसेस है. तो ये सिंसेरिटी इसका सेफगार्ड है अंदर के जगत का, और इसका इम्पैक्ट हमारे बाहरी हेल्थ पर होता है, बहुत अधिक होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर होता है, बाहरी हेल्थ पर होता है. लेकिन ओनली वन थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ इसका सारांश, क्योंकि ये विषय तो पूरे हफ्ते का विषय हो सकता है, परंतु सारांश की बाहर की तो बहुत बातें होती हैं मेडिकल स्टडीज़ में, ये दवाई वो दवाई, थोड़ा बहुत थिंक पॉजिटिव फील, नहीं वो तो करते हैं बहुत से लोग, लेकिन बीमारी हमें अंतर्मुखी होकर, और बीमारी आपको पटकती भी है, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी भावनाएं किधर जा रही हैं, हमारे अंदर कितना कामनाओं का सम्मिश्रण है. सचेत बने और उसको माताजी को ऑफर करें. कम से कम साधकों के लिए तो यही चीज़ है, और जैसे जैसे आप करेंगे आपके अंदर से वो बीमारी के जो बीज हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे. जड़ों में आप भगवान का प्रेम, और जैसे जैसे आप वो प्रेम को डालेंगे, आत्मनिवेदित करेंगे, माँ मेरे अंदर ये है वो है ये है वो है, तो लेकिन कभी भी उसके कारण ये नहीं कि मैं ये हूँ, दैट इज अ सटल डिफरेंस. मेरे अंदर ये है और मैं ये हूँ तो लोग ये करते हैं कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं, मैं अनफिट हूँ, वो दूसरा खेल शुरू हो जाता है, गिल्ट, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं भगवान के पास जाऊँ कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊँ. अरे भाई, मैली चादर ओढ़ के तो जाऊँगा कौन से, तुम अपने आप भगवान देंगे ना फिर वो मैली चादर लेकर के. लेकिन यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू गो देयर, और प्रोसेस है पूरी. तो केवल इतना हम स्मरण रखें, बाहरी रोग के और मानसिक रोग के भी अंदर में बीज होते हैं, वो बीज छिपे होते हैं, अज्ञान का उन पे एक सॉलिड पर्दा पड़ा होता है, और वो मन के खोजने से नहीं मिलते हैं. मन कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन देता है. तो आपको अंदर में सत्य निष्ठा जागृत करके कि सच में मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है. दूसरों को देखना बंद करें, खुद को देखना प्रारंभ करें. धीरे 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 अगर आप सच्चाई से देख रहे हैं, भगवान जानते हैं, उनका प्रकाश साथ में आएगा, देखेंगे मेरे अंदर क्या क्या है. और फिर जैसे जैसे देखेंगे, माँ मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑफर, माँ यही तरीका बताती हैं, ऑफर देम, ऑफर द एंटी डिवाइन इन यू, कहती हैं सबके अंदर है. और जैसे जैसे आप ऑफर करेंगे, साधक के लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि साधक एक साधक, वो कहा गया है ना, एक साधक एक एक लाख के बराबर, तो वो कई लोगों का काम कर रहा है, तो उसमें वो वृत्ति जाएगी फिर आएगी, जाएगी फिर आएगी. क्यों? क्योंकि अब उसने जो साधक है इस योग में, उसने अपने ही नहीं और भी लोगों का बीड़ा उठाया हुआ है. तो ये इसकी प्रोसेस है योग के पॉइंट ऑफ व्यू से. जय माँ.